ओम शांति।
ओम शांति।
तीस अक्टूबर 2016 की मुरली, जो कि अव्यक्त वाणी है 27 अक्टूबर 1981 की। सबसे पहला प्रश्न है, आज दीपकों के मालिक किन दीपकों को देखने आए हैं? दीपकों के मालिक किन दीपकों को देखने आए हैं? जिन्होंने मुरली पढ़ी है उन्हें पता है, पर जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है और जो बाबा को बार बार सुनते हैं वो भी बता सकते हैं, तो कौन किसको देख रहा है? दीपकों के मालिक किसको देख रहे हैं? दीप राजो को। दीप राज तो वो है, वो किसको देख रहा है?
दीप माला को देख रहे हैं।
दीप माला को देख रहे हैं, दीपावली को देख रहे हैं, आवली रो चैतन्य दीपकों को देख रहे हैं, और अनुभव के आधार से और जो सुना हुआ है उसके आधार से चैतन्य दीपक, जगमगाते दीपक, जगे हुए दीपक, सुंदर दीपक, दीपमाला, और किसको देख रहे हैं? भक्तों को भी देख रहे हैं। कौन देख रहा है? दीपकों का मालिक जो दीप राज है, किसको देख रहा है? दीप रानियों को देख रहा है। तो एक तरफ है दीप राज, दूसरी तरफ है दीप रानिया, एक तरफ है दीपकों का मालिक, दूसरी तरफ है चैतन्य दीपक, जगे हुए दीपक। आत्मा को दीपक से, आत्मा की तुलना दीपक से की गई है, क्यों? क्यों? क्योंकि आत्मा को की लाइट है, और आत्मा ज्योति स्वरूप है, इसलिए आत्मा प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, रोशनी दिखाती है, लाइट है, और देह जो है वो मिट्टी है, दिया है। स्मृति की लव, मुरली में एक शब्द आया है, स्मृति की लव जगाए हुए है देश विदेश, विदेश के बच्चे। तो आत्मा यदि दीपक है तो वो बुझ गई है। आत्मा का बुझना अर्थात क्या, और आत्मा का जगना अर्थात क्या? कब कहेंगे कि आत्मा बुझ चुकी है और कब कहेंगे कि आत्मा जगी हुई है? देह भान से आत्मा का दीपक बुझ गया है। जब विस्मृति हो जाती है, विस्मृति अर्थात बुझना, अंधकार अर्थात बुझना, तिमिर अर्थात बुझना, विस्मृत हो जाना अर्थात बुझना, भटकना अर्थात बुझना, आत्मा विकारों के वशीभूत हो जाना अर्थात बुझना, विकारों की हवा से बुझ जाती है, विकारों के वशीभूत हो जाती है, विकारों के अधीन हो जाती है। आत्मा जब शक्तिहीन हो जाती है, बलहीन हो जाती है, आत्मा में वो खुशी, वो उमंग, वो उत्साह जब नहीं रहता, जीवन नीरस हो जाता है, जीवन उदास हो जाता है, अंधकार चारों ओर दिखाई देने लगता है। ये बुझी हुई अवस्था है, और बाहर के कितने भी दीपक जला लो, बाहर कितनी भी रोशनी कर दो, एक किरण भी आत्मा को जगा नहीं सकती। बाहर चाहे जो करना है करो, अंदर यदि अमावस है तो बाहर के दीपक पूर्णिमा को कैसे ला सकते हैं? तो आत्मा की ऐसी विक्षिप्त अवस्था आत्मा की ऐसी विकृत स्थिति, आत्मा की ऐसी विस्मृत स्थिति अर्थात बुझना। द्वापर से कितनी ही दिवालियां मनाई परंतु दीपक जगा नहीं। इस भ्रम में हम थे कि दीपक जगा रहे हैं परंतु वह जगा नहीं। आत्म दीपक जगाने के लिए कुछ और चाहिए। किस चीज की आवश्यकता है? ज्ञान की, ज्ञान कृत की, ज्ञान के प्रकाश की। जब तक वो दीप राज ना आए ये दीपक नहीं जल सकता। चाहे कोई कितना भी जलाने की कोशिश करे, धर्म स्थापक आए, महान आत्माएं आई, परंतु दीपक बुझता ही गया। थोड़े देर के लिए थमा जरूर परंतु बुझता ही गया। ऐसी बुझी हुई स्थिति आत्मा की, ऐसी दुखी अवस्था आत्मा की अर्थात बुझा हुआ दीपक। तो आज दीपकों के मालिक किन दीपकों को देखने आए हैं? तो बाबा समझ रहे सभी कैसे हैं यहाँ पर, चैतन्य दीपक है। संसार के जो भक्त है वो अचैतन्य दीपकों को जलाते हैं, अचैतन्य चित्रों के सामने बैठते हैं, जड़ चित्र और जड़ दीपकों के साथ दीपावली मनाते हैं। संसार की जो दिवाली है वो भिन्न प्रकार की, 5 दिनों की दिवाली है उनकी। पहला दिन धनतेरस, दूसरा दिन आज छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी, नरकासुर को मारा था श्री कृष्ण ने, तीसरा दिन दिवाली, चौथा दिन पाड़वा, पांचवा दिन भाई दूज। 5 दिन क्या करते हैं संसार में दिवाली में? पहले तो घर को साफ करते हैं, कोना कोना साफ करते हैं, और क्या करते हैं? खरीदारी करते हैं, धुलाई में, धुलाई साफ सफाई में सब आ गया। उसके बाद में रंग देना, पुताई करना, नए कपड़े खरीदना, नए वस्त्र खरीदना, जेवर खरीदना, मिठाइयां खरीदना, बांटना, बर्तन खरीदना, मेले करना और फूलों की मालाओं से सजाना, और दिवाली के दिन गणेश और लक्ष्मी और गणेश के पूजा करना। मेले करते हैं दिवाली के दिन। जैन धर्म क्यों मनाता है दिवाली? महावीर के मोक्ष का दिन माना जाता है। सिख धर्म क्यों मनाता है? उसके 2 कारण हैं। एक तो गुरु हरगोविंद सिंह, छठे गुरु, उनको उनकी रिहाई हुई थी, इसके लिए इनको बंदी छोड़ दिवस भी कहते हैं। और जो गोल्डन टेंपल का शिलान्यास आज ही के दिन हुआ है, सिख धर्म स्वामी किस साल में 1519 शायद, थोड़ा आसपास ऐसे कुछ साल है। और स्वामी रामतीर्थ का जन्म और मृत्यु दोनों ही दिवाली के दिन है। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु दिवाली के दिन, वो यहाँ पर अभी यज्ञ की स्थापना भी दिवाली के दिन। तो संसार में दिवाली का बहुत महत्व है। सभी त्योहारों में दिवाली सबसे अधिक प्रभावशाली, प्रभावकारी त्योहार है और इसको सभी मनाते हैं, सब। यहाँ तक कि मुगल सम्राट अशोक, मुगल सम्राट अकबर बहुत ही धूमधाम से ही मनाता था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, वो भी इसे बहुत धूमधाम से मनाता था। शाह आलम 2, वो भी इसे धूमधाम से मनाता था। क्रिश्चियंस उस रीति से तो नहीं मनाते, परंतु जहाँ एक साथ रहते हैं एक दूसरे को बधाइयां तो देते ही है। जैसे हम उन्हें मैरी क्रिसमस कहते हैं, वो हमें हैप्पी दिवाली कहते हैं, तो वो भी एक रीति से मनाते हैं। तो दिवाली जो त्योहार है वो लाइट का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है।
हम्म,
पांडव सबसे बड़ा कारण तो दिवाली का है, दो मुख्य कारण है। सबसे बड़ा कारण है श्री राम 14 साल के वनवास के बाद में अयोध्या लौटे। ये सबसे बड़ा कारण है कि सभी अयोध्या निवासियों को ये था कि श्री राम हमसे पहले मिले। सबसे पहले हमारी प्रभु धरि विविध शरीर, श्री राम ने अनेक रूप धरे। एक ही राम, एक हरेक को लग रहा था मुझसे मिल रहा है, जैसे भगवान हमसे मिल। दूसरा मुख्य कारण महाभारत का है, वो कौन सा? अज्ञातवास और 12 वर्ष का वनवास, पांडवों का जो वापसी का दिन था वो भी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। तो शास्त्रों में तो ऐसे कई सारे कारण, कई सारी कहानियां भरी पड़ी है, और भी बहुत सारी कहानियां होगी। तो बाबा कह रहे हैं, दीपकों के मालिक किन दीपकों को देखने आए हैं? तो बाबा यहाँ तुलना कर रहे हैं, भक्त जो है वो जड़ दीपक और जड़ चित्रों के साथ दीपावली मनाते हैं, आप जो है उस मालिक के बालक बच्चे, उस मालिक के साथ दीपावली मनाते हो। हमारी दिवाली जो है वो बहुत भिन्न है, अनूठी है, अद्भुत है। इस दिवाली में कोई आतिशबाजी नहीं, वहां पर आतिशबाजी होती है उससे दो बड़े, बहुत बड़े नुकसान है। कौन से? एक, अच्छा तीन। एक तो पैसा, दूसरा पर्यावरण, वायु प्रदूषण, जो ध्वनि प्रदूषण, उसके जो कण होते हैं, आतिशबाजी के समय तो नहीं परंतु आतिशबाजी के बाद वो वातावरण में रहते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं। और बर्निंग, जलना, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है। 65% दुर्घटनाएं जो है वो अनार की वजह से होती है, जो तथ्य निकाले हैं वैज्ञानिकों ने। तो उस दिवाली में आतिशबाजी, उस दिवाली में तो आवाज है, उस दिवाली में पर्यावरण को नुकसान है। हमारी जो दिवाली है, यहाँ मन का मौन है और मन की शांति और मन का डांस है। हमारी जो दिवाली है उनकी केवल 5 दिवसीय दिवाली है, हमारी 5 दिवसीय नहीं है। हमारी हर घड़ी, हर सेकंड, हर संकल्प नया। विठोबाचे राज्य अम्मा नित्य दीपवाड़ी। महाराष्ट्र के संत कहते हैं कि उसके राज्य में हर समय हमारे घर में दिवाली ही दिवाली है। तो हमारी दिवाली वैसी दिवाली नहीं है जैसे संसार की है। यहाँ आवाज नहीं, यहाँ आतिशबाजी नहीं, यहाँ पर उस तरह से घर को साफ करना नहीं है। यहाँ पर तो मन की सफाई, बुद्धि की सफाई है, आंतरिक चेतना की सफाई है, विकारों से स्वयं को मुक्त करना है। वहां यहाँ एक नहीं, यहाँ तो आंतरिक जो नरकासुर है उसको मारना है। यहाँ विश्व बंधुत्व का संदेश है, केवल एक भाई और एक बहन का नहीं, एक पति और पत्नी का नहीं, जो गुड़ पाड़वा में मनाया जाता है, पति पत्नी के संबंध का जो दिवस है 14 दिवाली का, वो नहीं। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में ही पाड़वा ही कहते हैं। 4th दिन गोवर्धन पूजा, वो एक दूसरा अर्थ है उसका। उत्तर प्रदेश यूपी के साइड में गोवर्धन, गोवर्धन की पूजा होती है, बहुत सारे खिलौने, तो वो भी एक उसका अर्थ होता है। तो जैसे जैसे देश, राज्य बदलता है, जैसे भारत में पानी और वाणी, पानी और वाणी कोस कोस में बदलते हैं, वैसे त्योहार भी पानी और वाणी के जैसे कोस कोस में बदलते हैं। उनकी जो शैली है वो बदलती है, जिस ढंग से उसे मनाया जाता है वो बदलता है। जैसे रास है, गुजरात में चले जाओ तो वहाँ दांडिया रास है, वही मथुरा वृंदावन में चले जाओ तो वहाँ रास लीला है, जो कृष्ण ने गोपियों के साथ मनाई थी, तो यहाँ पर थोड़ा अलग है। गुजरात की जो रास है, एक प्रश्न नागेश भाई ने वो भी लिखा है, गुजरात की रास का अभिप्राय क्या है? क्या अभिप्राय है? गुजरात की रास का क्या अर्थ है? चिमन भाई जी, चिमन भाई को पता होना चाहिए क्यों मनाते हैं ये रास दांडिया? उनकी रात गुजर, बाबा का नहीं बताओ, बाबा तो शब्द को संसार की क्या मान्यता है उसकी यादगार, वो तो एक कारण है। और दूसरा रास दांडिया का कारण दूसरा है, रास लीला का कारण दूसरा है। रास लीला जो है वो कृष्ण ने गोपियों के साथ जो मनाई थी वो दूसरा। यहाँ तो दुर्गा देवी का जो युद्ध हुआ था, दुर्गा का युद्ध महिषासुर के साथ जो बहुत घमसान युद्ध हुआ था उसका यादगार है। इसीलिए इसे तलवार का नृत्य भी कहा जाता है। इसके लिए जो छड़ी है वास्तव में तलवार का प्रतीक है, तो वो वहां से आया है। फिर से उसी प्रश्न पर आते हैं, अभी दूसरा है उसी के अंदर, चैतन्य दीपक कौन है? चैतन्य दीपक कौन है?
स्मृति स्वरूप,
जो स्मृति स्वरूप है, जो याद में है, जो अपने स्व के स्वरूप में है, स्व के स्वरूप में स्थित है, स्वधर्म में स्थित है, स्वरूप में स्थित है, स्वदेश की याद में है, स्वधर्म की याद में है, जागरण की अवस्था है, सोई हुई अवस्था नहीं है, जागरण जागृति चौकस अवस्था है, संपूर्ण अवेयरनेस की अवस्था है, संपूर्ण कॉन्शियसनेस की अवस्था है, संपूर्ण अमूर्छा की अवस्था है, अनकॉन्शियस नहीं है, मूर्छित नहीं है, देहभान में नहीं है, विकेंद्रीकरण नहीं हुआ है, केंद्रित है, परिधि पर नहीं है, परिधि पर घूम नहीं रही है, पेरिफेरी पर में नहीं है, बीइंग में है, आत्म केंद्रित है, सोल कॉन्शियस है, देहभान की अवस्था नहीं है, देहभान परिधि है, देहभान ऑर्बिट है, देहभान सरकमफेरेंस है, देहभान वर्तुल है, परंतु चैतन्य दीपक अर्थात आत्म केंद्रित अवस्था, चैतन्य दीपक अर्थात सोल कॉन्शियस, सॉइल कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस, ऐसी जो जगमगाती अवस्था है सदा, वो है चैतन्य दीपक। और निरंतर, थोड़े समय के लिए जगा हुआ नहीं, फिर बुझा, निरंतर अहर्निश निरंतर। तो चैतन्य दीपक वो है जो आत्मस्मृति में है, आत्म अभिमानी स्थिति में है, केंद्र पर है। चैतन्य दीपकों की क्या विशेषता है?
स्वयं को जलाना पड़ता है,
ये स्वयं स्वयं को जलाना पड़ता है। बुद्ध ने अपने निर्वाण के पहले अपने परम शिष्य आनंद से कहा था पाली भाषा में, अप्पो दीप भव, अप्पो दीप भव, ओ आनंद बी अ लाइट अन टू योर सेल्फ, स्वयं का प्रकाश स्वयं ही बनो। दूसरा कोई बाहर का कोई प्रकाश तो अंदर के प्रकाश को जगा ही नहीं सकता, स्थूल प्रकाश, ये तो स्वयं स्वयं को जलाना है, स्वयं का प्रकाश स्वयं, किसी और के प्रकाश, किसी का प्रकाश उधार नहीं लिया जा सकता, किसी के और के प्रकाश में अवलंबन नहीं किया जा सकता, निरालंब की अवस्था है ये। चैतन्य दीपक अर्थात निरालंब, अवलंबन नहीं है जिसमें, इंडिपेंडेंट, सारे संबल छूट गए संसार के, स्वयं मीच माजा संग झालो, चिरा चिरा जुड़ला माजा मीच माजा संग झालो, और कोई संग नहीं है, बाकी सारे संग छूट गए, बाकी अभी ऊर्जा बाहर नहीं जा रही है, ऊर्जा ने बाहर जाना बंद कर दिया है, इसके लिए ऊर्जा आत्म केंद्रित है। ऐसी आत्म केंद्रित स्थिति, ऐसी ऊर्जावान अवस्था, ऐसी प्रचंड ऊर्जा की अवस्था चैतन्य दीपक की अवस्था है, और यही उसकी विशेषता है। अगला प्रश्न है, भक्त जड़ दीपकों के साथ दीपावली मना रहे हैं, आप किसके साथ मना रहे हो?
मालिक
के साथ, दीपराज के साथ, उस परम ज्योति के साथ, उस महाज्योति के साथ, उस सुप्रीम लाइट के साथ, वह लाइट जो सारे लाइटों को लाइट देने वाला है, वह प्रकाश जो सर्व प्रकाश का स्रोत है, वह प्रकाश जिससे सर्व प्रकाश प्रवाहित हो रहा है संसार में, वह ज्योतिर्मयी, उसके साथ हमारी दिवाली है, आत्मा की परमात्मा के साथ दिवाली। दीपमाला की क्या विशेषता होती है? अविनाशी, मुरली से है, मुरली से उत्तर है, अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप, अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप। ये जो दीपमाला है, ये बेहद की दीपमाला है, यह जो दीपमाला है ऐसी संसार में और कहीं नहीं हो सकती, यह जो दीपमाला है अविनाशी है, अमर ज्योति स्वरूप। ये चलती है तो सारा संसार प्रकाशित हो जाता है। वो जो प्रकाश है उससे आत्मा प्रकाशित हो ही नहीं सकती, मनुष्य भ्रम में रहेगा बस कि मैं प्रकाशित हो रहा हूं, घर जगमगा रहा है, परंतु अंतस में तो अंधकार भरा हुआ है। वो अमावस की रात चल रही है, दुविधा है, प्रश्न है, उत्तर नहीं मिल रहे है, उदासी है, दुख है, विषाद है, अवसाद है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, पश्चाताप है, अग्नि है, कंफ्यूजन है, असमंजस, मन मुटाव, नफरत, घृणा, द्वेष, ये सारी चीजें ये अंधकार का प्रतीक है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये प्रार्थना की थी ऋषियों ने, परंतु पूरी नहीं हुई, अब पूरी हो रही है। जब वो ज्योति महाज्योति इस धरा पर अवतरित हुई है, तब दीपमाला पर भक्त धन की देवी का आवाहन करते हैं। आप किसका आवाहन करते हो? वो धन की देवी का आवाहन करते हैं, वो धन की देवी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि धन की देवी लक्ष्मी इस दिन बहुत प्रसन्न होती है, इसके लिए जो जो उसकी पूजा करती है वो करते हैं, उनके उनको धन धान्य से भरपूर कर देती है, घर घर चक्कर लगाती है, जिस घर में दिया नहीं जल रहा है वहां वो प्रवेश नहीं करती, इसके लिए दिए उसके लिए जगा के रखते, उसके स्वागत के लिए। और एक कहानी है दिवाली, दिवाली की जो सागर मंथन हुआ था, उसमें जो लक्ष्मी का, लक्ष्मी प्रकट हुई थी, लक्ष्मी का जन्म दिवस अर्थात दिवाली, इसके लिए लक्ष्मी की पूजा। और एक दूसरी कहानी है, लक्ष्मी का जो विवाह हुआ था विष्णु के साथ, मोहिनी अवतार वो जो दिखाया है जिसमें नारद बंदर का रूप धारण करके आता है, बाबा मुरलियों में बहुत याद करते हो, तो वो जो विवाह का दिन है वो भी दिवाली। ये एक दूसरा कारण है दिवाली का, दिवाली के कोई एक कारण नहीं है, देखो कितने कारण है संसार में, अलग अलग कारणों से मनाते हैं। बौद्ध जो है वो भी दिवाली मनाते हैं, कारण इतना पता नहीं क्यों, पर वो भी मनाते हैं। उनके इसमें वही जो अपो दीपो भव कहा है उसी का महत्व है। तो भक्त किसकी, किसको आह्वान करते हैं? देवी को, लक्ष्मी को। और बंगाल और उड़ीसा की तरफ ये जो पूजा है देवी की, वो वहां लक्ष्मी नहीं होती, वहां काली, काली की पूजा करते हैं। वो लक्ष्मी पूजा हो गई है, वो उधर रूपांतरण हो जाता है उसका, उधर काली पूजा में रूपांतरित हो जाती है दिवाली में। तो वो लोग धन की देवी का आह्वान करते, हम किसका आह्वान करते हैं? अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते हैं। हम किसका आह्वान करते हैं? धनवान भव की स्थिति का आह्वान करते हैं। आह्वान है स्थिति का, तीन आह्वान है मुरली में। एक तो भक्त आह्वान कर रहे हैं लक्ष्मी का, दूसरे प्रकृति आह्वान कर रही है हम ब्राह्मण आत्माओं का, और तीसरा हम आह्वान कर रहे हैं अपनी संपूर्ण स्थिति का या फिर धनवान भव की स्थिति का, यह हमारा आह्वान है। तीन आह्वानों की चर्चा मुरली में। तो
इस मुरली में मम्मा भी आई है ना?
इस मुरली में मम्मा भी आई है तो बाबा भी आए हैं, दोनों भी आए। और बाबा रात को 1:30 बजे तक थे, वो जो लास्ट के महावाक्य चले हैं वो रात को 1:30 बजे चले इस मेडिटेशन हॉल 81। दीपावली के दिन लक्ष्मी के साथ साथ, और ये बीच में डाल दिया है, प्रश्न वैसे थोड़ा आगे है, और किसकी पूजा, और किसकी पूजन पूजा होती है, तो लक्ष्मी के साथ किसकी पूजा होती है? बच्चे की, शिवपुत्र गणेश। तो हम सब कौन है? शिवपुत्र गणेश है ना, तो हमारी भी पूजा होती है साथ साथ। हाँ, सबसे पहले तो उसकी पूजा होनी पड़ती है, करनी होती है। हाँ, गणेश की
किसे कहेंगे?
गणेश किसे कहेंगे? कौन है गणेश? गणपति किसे कहेंगे? ज्ञानवान, बुद्धिवान, नॉलेजफुल, समझदार, त्रिमूर्ति का नॉलेज, तीनों काले कालों का नॉलेज, ऐसा जो है वो गणेश। एक तो ये परिभाषा है उसकी। दूसरी परिभाषा है विघ्न विनाशक, उसको आगे देखेंगे, अभी आगे चलते हैं। दीपराज क्या वरदान दे रहे हैं? दीपराज वरदान दे रहे अमर भव। इस मुरली से बहुत सारे वरदान निकाल सकते हैं। एक तो वरदान है अमर भव, दूसरा वरदान है प्रकृति चीत भव, तीसरा वरदान है विधाता भव, चौथा वरदान है वरदाता भव, पांचवा वरदान है गणेश भव, छठवा वरदान है विघ्न विनाशक भव, बुद्धिवान भव, नॉलेजफुल भव, धनवान भव, अमर ज्योति, वो याद प्यार में फिर से बाबा ने कहा है अमर ज्योति भव, और सदा सहयोगी भव, सदा समीप भव, तपस्या और सेवा के आसन पर विराजमान भव, सदा सिंहासन धारी भव। बहुत सारे निकाल सकते हैं। हम शरीक भव। तो दीपराज नहीं, तो दीपराज अपने सर्व दीपरानियों को कौन सी बधाई दे रहे हैं? कौन सी बधाई दे रहे? अमर ज्योति, अमर ज्योति भाव की बधाई, अमर ज्योति की बधाई दे रहे, अविनाशी बधाई दे रहे। एक जगह कहा है दीपराज ने विदेश वालों के लिए क्या विशेष कहा? एक में अनेक, वो तो नहीं, दूसरी बातें पर यहाँ पर हरेक की स्मृति की लव लगाई हुई है। वो पूरा वाक्य वैसा ही है, देश वालों के लिए नहीं हो, उस देश वालों के लिए स्मृति की लव। दीपराज अपनी सभा को बहुत बड़ा कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ एक सभा नहीं है, एक सभा छोटी है जो साकारी है, दूसरी जो है वो बड़ी सभा है, वो आकारी सभा है, वो फरिश्तों की सभा है। सब जगह बैठे हुए 1000 से ज्यादा लोग, भाई बहने आए, कोई अलग अलग जगह बैठे है, तो बाबा जो नीचे बैठे है उनको सामने नहीं, नयनों में, नीचे जो है उनको नैनों में देख रहे हैं। नैनों में सदा स्थान है, नैनों में सदा स्थान है नीचे, और जो वहां है ही नहीं वो दिल में, उनको बोला नहीं पर हमेशा कहते हैं वो नजदीक है, जो दूर है वो नजदीक है। तो अपनी सभा को बहुत बड़ा कैसे देखते हैं? क्योंकि फरिश्तों को देख रहे हैं। भविष्य में प्रकृति किस तरह से सहयोग देगी? अंतिम समय में प्रकृति कैसे सहयोग की माला पहनाएगी? पहले तो वह दिव्य दिवस आएगा। यहाँ ये बीच में आ गया, इसके पहले तो, अच्छा इसको छोड़ो, इसकी ये बात का है, उसके पहले दूसरा है, मधुबन के आंगन में आज कौन हाजिर नाजिर है? तो ये फरिश्ते, ये प्रश्न पहले आना चाहिए। फरिश्ते हाजिर नाजिर है, फरिश्तों की महफिल हाजिर नाजिर है, ये ऊपर वो नीचे, तो फरिश्तों की महफिल हाजिर नाजिर है। ठीक है, यहाँ पर बेहद का हॉल किसे कहेंगे? कहा है, और उस बेहद के हॉल में कौन सी चार दीवारें होगी? बाबा कह रहे हैं ये जो हॉल है बहुत छोटा है, पहले तो हिस्ट्री हॉल छोटा पड़ गया, तो मेडिटेशन हॉल, मेडिटेशन हॉल छोटा पड़ गया तो ओम शांति भवन वो छोटा पड़ गया, वो अभी बन रहा है ओम शांति भवन, तो डायमंड हॉल, डायमंड हॉल भी छोटा पड़ जाएगा तो क्या करेंगे? सागर के बच्चे, सागर के बच्चे जो है वो सागर समान ये हॉल हो जाएंगे, चाहे कितना भी बड़ा करो। इस हॉल में, हद के हॉल में बेहद कैसे समा सकता है? फिर तो क्या बनना पड़ेगा? मौसम, इसमें तो छत और दीवारें हैं। एक समय आएगा जब चार तत्व, पांचवा कौन सा छोड़ दिया?
आसमान।
अरे आसमान को क्यों छोड़ेंगे? क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल अग्नि, अग्नि थोड़ी ना चाहिए, अग्नि तो जला देगी ना, तो अग्नि को छोड़ा है। चार तत्व बाबा ने कहा है, चार तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति धरती जल, क्षिति जल पावक अग्नि गगन, गगन समीरा हवा, चार तत्व होंगे ये नहीं, चार दीवार बन जाएंगे, चार तत्व चार दीवार बन जाएंगे। मौसम के हिसाब से फिर ना तो छत की आवश्यकता ना ही दीवारों की आवश्यकता होगी। ये है बृहद का, बेहद का, बृहद हॉल, बेहद का हॉल, ऐसा हॉल होगा एक समय, बाबा ने भविष्यवाणी की है यहाँ पर, ऐसा समय आएगा। ये दीवार, छोटी छोटी दीवारों में कहाँ कैद कर सकोगे? हाँ, बाबा ने कभी विदेशियों से ये भी कहा है, बड़े बड़े सूटकेस लेते हो ना, सूटकेस तुमको बहुत अच्छी लगती है, तो वो पहाड़ी तुम्हारी तकिया होगी, एक दिन सूटकेस तकिया बन जाएगी। तो ऐसा समय आएगा, ये रिहर्सल करा रही है प्रकृति। फिर बाबा ने प्रकृति का और एक दृश्य दिखाया, जैसे प्रकृति में हलचल हो रही है, परंतु वहां कितनी भी हलचल हो, प्रश्न यहाँ है उसका। ये बेहद का हॉल, चारों ओर किसी भी तत्व द्वारा कितनी भी हलचल हो, लेकिन जहां प्रकृति के मालिक होंगे वहां पर प्रकृति दासी बनकर सहयोग देगी। जहां तुम्हारा पाव होगा और जहां तुम्हारा स्थान होगा वहां पर नुकसान नहीं हो सकता है, भल आगे के मकान में नुकसान होगा परंतु तुम सेफ रहोगे। उधर होगा चिल्लाना, इधर होंगे अचल, उधर दिख रहा होगा धरती हिल रही है, तूफान आ रहा है, परंतु तुम सेफ होंगे। उधर होगा सूली, इधर होगा कांटा, परंतु उसके लिए प्रकृति जीत बनो, प्रकृति जीत बनने का अभ्यास। प्रकृति में जो भी हलचल होती है, आगे कहा ना विघ्न विनाशक, अच्छा बातचीत भी नहीं और नाम निशान भी नहीं, बातचीत भी नहीं हो उसकी ज्यादा। आज ठंड बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर कितना है? आज गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना बहुत आ रहा है। आज फैन नहीं है, आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आज बहुत घुटन हो रही है, घुटन महसूस हो रही है। बातचीत अटर वेस्ट ऑफ टाइम। प्रकृति में क्या हो रहा है? ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रकृति अपना खेल देखा रही है। इस ड्रामा में जो होता है सब राइट है, आज की मुरली में कहा है? ये नहीं कह सकते ऐसा क्यों वैसा क्यों ये क्यों वो क्यों, सब राइट है, यहाँ पर सब अच्छा है। बहुत ठंड है, बहुत अच्छा, बारिश बहुत हो रही है, जा नहीं सकते घर के बाहर, सेंटर नहीं पहुंच सकते, बहुत अच्छा, घर में बैठ के पढ़ो। उसमें एक सूक्ष्म स्वीकार्य का भी भाव है, प्रकृति के प्रति कंप्लेन का भाव ना हो, प्रकृति के प्रति कंप्लेन, प्रकृति की चर्चा करना, बातचीत करना, कमेंट कमेंट्स करना प्रकृति के ऊपर। ये मौसम बहुत अच्छा है, वाह कितनी ठंडी है, वाह वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पॉजिटिव, निगेटिव कॉमेंट्स अर्थात निगेटिव होती है, उसके ऊपर निगेटिव कॉमेंट्स करना, कंप्लेन करना और दिखाना कि हम बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ठंड है, मुझे ठंडी सहन नहीं होती है, खांसी होती है, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, शरीर साथ नहीं देता है यहाँ पर, ये ब्राह्मणों की रॉयल भाषा है, शरीर साथ नहीं देता,
मौसम बदलता है।
ऐसा संसार में कोई नहीं बोलता, ये यहाँ की भाषा है।
मौसम बदलता है तो मौसम की बीमारियां
होती है, वो होने दो। बाबा ने कहा है वाह व्याधि वाह, बीमारी आ जाए तो वाह व्याधि वाह, तो खुश होकर विदा होगी। बीमार हो और यदि दवाई खाने पड़े तो वाह ड्राई फ्रूट्स वाह, ड्राई फ्रूट समझ कर उसे स्वीकार करो। सारे के उत्तर दे दिए अलग अलग मुरलियों में, सीजन का मेवा, तो हर सीजन के प्रति एक स्वीकृति का भाव हो। आने से पहले ही स्वीकार कर लो कि हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, एक संकल्प पूरा 3 मास स्थिति को ऊपर रख देगा। केवल छोटा सा संकल्प, हमें डिस्कस नहीं करना है, चर्चा नहीं करनी है, कंप्लेंट नहीं करनी है किसी भी सीजन के प्रति, चाहे फैन हो या ना हो, चाहे हीटर हो या ना हो। हीटर की क्या आवश्यकता है, तपस्या की अग्नि को ऐसी प्रदीप्त करो कि कमरा गर्म हो जाए। बारिश में छत्र छाया, छतरी और छतरी के साथ में छत्र भी हो, तो सारे ही सीजन जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है। जिस हाल में वो रखे उस हाल में रहना, किस बात की चिंता, होई सोई जो राम रच रखा, जो उसने रच के रखा है, को करे तर्क बढ़ावे साखा। क्यों तर्क कर रहे हो, क्यों बंधनों को बढ़ा रहे हो, इसके लिए एक सूक्ष्म स्वीकार का भाव, स्वीकार कर लेना ये होगा और हम तैयार हैं। और उस तरह अपने देह को भी तैयार करना है उसके लिए, ये देह भी शक्तिशाली हो। तो प्रकृति जीत, ये भी वरदान लेना है। तो पहला वरदान कौन सा लिया, अमर भव, दूसरा वरदान प्रकृति जीत भव, तीसरा वरदान है धनवान भव, इस स्थिति का आह्वान करना है आगे। अच्छा, प्रकृति कौन सी माला पहनाएंगी, हीरे रत्नों की या चंदन की,
सहयोग
की माला, सहयोग देगी प्रकृति, हमारा हमारी साथी बन जाएगी।
जिसने पहले से सहयोग किया वो
जिन्होंने प्रकृति को सकाश दी है उनका सहयोग, जिन्होंने प्रकृति को गालियां नहीं दी है रोज बैठकर ऑफिस में बैठकर फैन नहीं चल रहा है, पसीना आ रहा है, प्रकृति को गालियां दे रहे, वो वहां प्रकृति सहयोग नहीं देगी उनको। प्रोग्राम है, बहुत बड़ा मेगा प्रोग्राम रखा है हमने, सारी बहुतों को बुलाया है और तेज बारिश हो रही है, हम गालियां दे रहे हैं। देखा, बॉम्बे में याद है हमको एक बार बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था, बहुत बड़ा, जिसमें महाराष्ट्र के सब लोग आए थे, कहीं कहीं से गाड़ियां भर भर के आई थी, पर सुबह से बारिश चालू थी, सुबह से कंटिन्यूस बारिश चालू थी। सुबह से भाई बहने अलग अलग कमरे में हॉल में बैठ बैठ के योग कर रहे, इतना योग कर रहे, इतना योग कर रहे, और बाहर वालों के लिए प्रोग्राम था। प्रोग्राम का समय आया, बारिश और तेज हो गई, रुकी नहीं लास्ट तक, केवल उसमें हमारे ही बीके सफेद भाई बहने छाता लेकर कुछ कुछ खड़े थे बस, बाकी जो आने वाले थे कोई नहीं आया। कितना खर्चा और वो सब कुछ किया था, कुछ नहीं, कोई नहीं आया। केवल कौन खड़ा रहेगा छाता लेके, अपने भाई बहन खड़े थे बस छाता ले लेके, बाकी कोई नहीं था। बिना पैसे, हाँ, ब्रह्मा कुमारी का प्रोग्राम बरसात, ये पॉजिटिव आउटलुक है, बरसात में भी हुआ। परंतु जो भी प्रकृति खेल दिखाए, चाहे कैसा भी हो, सब में कल्याण छिपा हुआ है। हम अपने ट्यूबुलर विजन से देख रहे हैं, एक नैरोड विजन, हमारा संकीर्ण दृष्टिकोण है, उस संकीर्ण दृष्टिकोण से अपने फायदे के लिए देख रहे हैं, इसके लिए हमें उसमें दोष दिखाई देते हैं। बाकी इस ड्रामा में जो हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब कल्याणकारी है। नेक्स्ट, अ अंतिम समय दुख की घड़ी में चारों ओर से क्या आवाज होगा? अंतिम समय दुख की घड़ी होगी, अंत में लोग आपके तरफ किस लिए भागेंगे? अंत में सबके मुख से कौन सा आवाज निकलेगा?
ओ प्रभु,
ओ प्रभु तेरी लीला अपरंपार, धन्य हो धन्य हो, आपने सब कुछ पाया हमने नहीं पाया गवाया, आपने सब कुछ पाया हमने नहीं पाया। आज की मुरली में शिव बाबा को केवल तुमने पाया है, दुनिया ने नहीं पाया। शिव बाबा को केवल तुमने जाना है, दुनिया ने नहीं जाना। क्योंकि तुमने शिव बाबा को जाना है तो बहुत जोर से खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। आज की मुरली में महावाक्य है ये, तुमने शिव बाबा को जाना है पाया है तो बहुत जोर से खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। एक दूसरी जगह शुरुआत में कही महावाक्य है, तुमने शिव बाबा को पाया है, दुनिया वालों ने शिव बाबा को नहीं पाया है। छोटा सा वाक्य है पर कितनी पावर है उसमें। हमने उसको पाया है जिसे किसी ने नहीं पाया। इसके लिए जोर से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। वो केवल मुख का हंसना नहीं तो कितनी खुशी होनी चाहिए अशोक भाई, कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको? अपार खुशी। और कितनी होनी चाहिए? नाखून से चोटी तक तुम्हें खुशी होनी चाहिए। और वैष्णवी बहन कितनी खुशी होनी चाहिए?
परम धाम तक।
और बताओ बाबा का एक पावरफुल महावाक्य इसके बारे में जो सब तुम्हारा दिमाग की नस फट जानी चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए तुमको। कापारी खुशी तो बहुत छोटा है, कापारी खुशी, हड्डी खुशी, तुम जिगरी खुशी, गदगद होना चाहिए, बेशुमार पारावार नहीं, तुम्हारे दिमाग की नस फट जानी चाहिए, इतनी तुम्हें खुशी होनी चाहिए। तुम्हें भगवान मिला है, अभी थोड़ी कम खुशी हुई है, इतनी नहीं हुई है, नशा नहीं है उस खुशी का। वो लास्ट खुशी होगी। पावा परम विश्रामा, तुलसीदास ने लिखा है, रामचरितमानस पूरा किया और लिखा कि है, मुझे आज परम सुख की अनुभूति हुई है। पावा परम विश्रामा, ऐसा विश्राम, पूर्ण काम हुआ हूं मैं आज। परफेक्ट हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस, वो जो अवस्था है आत्मा की, बी एटीट्यूड की अवस्था, संपूर्णता की अवस्था, प्लेनिट्यूड, इंग्लिश में शब्द है प्लेनिट्यूड, फुलफिलमेंट, संपूर्णता, सब कुछ पा लेने की अवस्था। इसके बाद अब कुछ उसमें भरना बाकी नहीं। तो अंत में लोग किस लिए भागेंगे? ये स्थान एश्लम बन जाएगा। बाबा पता नहीं एश्लम क्यों कहते, इंग्लिश में असाइलम है वो, पर उसको हिंदी में एश्लम शब्द तो कहीं है ही नहीं, उर्दू में भी नहीं है ना तो हिंदी में है। शायद कहीं जगह लिखा है एश्लम, कहीं लिखा है एश्लम, और एश्लम और एश्लम ना तो हिंदी में ना तो उर्दू में ना कहीं कौन सी भाषा में पता नहीं, इंग्लिश में है असाइलम, उसका अर्थ होता है हॉस्पिटल, उसका अर्थ होता है शेल्टर, उसका अर्थ होता है प्लेस ऑफ सेफ्टी, आश्रय स्थान, जहां पर पनाह मिले, ऐसा स्थान जहां पर आश्रय, आश्रय ऐसा आश्रय स्थान, आलय, ऐसा आलय, आश्रय आलय, शायद सिंधी होगा, एश्लम कहते हैं बाबा। बाबा के वाक्य क्या है? ये तो लिखे हुए है, एश्लम कहीं लिखा है, कहीं एश्लम लिखा हुआ है, तो आश्रय, हम आश्रय कहेंगे। तो ये कौन सा स्थान आश्रम बन जाएगा? एश्लम बन जाएगा। शांतिवन के लिए बाबा ने महावाक्य, शांतिवन के बहुत बड़े 95 में महावाक्य उच्चारण किए शांतिवन के लिए, जो कि शांतिवन में बोर्ड पर लिखे हुए है, जाते ही बाहर वो ट्रांसपोर्ट के वहां पर। परंतु ये बाबा केवल शांतिवन, शांतिवन तो तब था ही नहीं, मधुबन या जितने सेवा केंद्र है सबके लिए कह रहे हैं। स्थूल सूक्ष्म सहयोग लेने के लिए स्थान पर लोग आएंगे, स्थूल सूक्ष्म सहयोग लेने के लिए दौड़ेंगे लोग, और ये स्थान आश्रय का स्थान ये बनेगा। और फिर चारों ओर आवाज गूंजेंगी, धन्य हो चारों ओर आवाज गूंजेगी, तुमने पाया, हमने नहीं पाया, गवाया, चिल्लाएंगे, ओह प्रभु तेरी लीला अपरंपार, ओ माँ भी चिल्लाएंगे, जो विरोधी आत्मा है वो ओ माँ चिल्लाएंगे। तो उसके बाद आपके तरफ किस लिए भागेंगे? हमारी तरफ, ऐशलम के अधिकारी बनने के लिए, ऐशलम के इंतजार के अधिकारी बनने के लिए, नंबर वन सहयोग लेने के लिए इसलिए भागेंगे। अंत में सबके मुख से कौन सी आवाज? उस समय ब्राह्मण बच्चों का क्या रोल होगा, क्या कर्तव्य होगा हमारा? हमारा जैसे बाप के बच्चे वरदाता और वरदानी बन जाएंगे, वरदाता और विधाता बन जाएंगे, ये हमारा रोल होगा उस समय। उसके बाद अंत में आपका स्थान क्या बन जाएगा? ऐशलम। ऐशलम लेने वाले नंबर वार क्यों है? तीन कैटेगरीज है, थ्री कैटेगरीज है उसमें। सबसे पहले है सहयोगी, दूसरे है इंतजार करने वाले, और तीसरे है विरोध करने वाले। कौन से बच्चे ऐशलम के अधिकारी नहीं बनते हैं इसको बाद में देखते हैं। जो स्थापना के कार्य में आदि से अंत तक सहयोगी रहे हुए उनका उसका फल अंत में क्या मिलेगा? विरोधी आत्माओं के प्रति भी शीतला चाहिए यहाँ पर, शीतला। देवियों का क्या कर्तव्य हो गया? तो सबसे पहली आत्मा है, तीन कैटेगरीज है, सबसे पहले सहयोगी आत्मा है, सहयोग, जिन्होंने आदि से अंत तक सहयोग दिया। क्या कहा उन्होंने? ये कार्य अच्छा है, कार्य करते करते अच्छे है, परिवर्तन का कार्य अच्छा है, आदि से अंत तक इन्होंने सहयोग दिया है। ऐसी आत्माएं जो इस ईश्वरीय कार्य, ईश्वरीय परिवार के सहयोगी है, जिन्होंने कभी विरोध नहीं रखा, जिन्होंने सहयोग की भावना रखी, ऐसी सहयोग की भावना रखने वाले, माने या ना माने वो दूसरी बात है, भले उन्होंने माना नहीं परंतु सहयोगी रहे, माने या ना माने, वो सभी क्या होंगे? ऐशलम के अधिकारी होंगे।
ज्ञान में चले नहीं, चले
वो चले नहीं ज्ञान में, माने ना माने, बाबा ने कहा है। ऐसी जो आत्मा है जो केवल सहयोगी रही है, तो वे किस कैटेगरी में? वो तड़पती हुई आत्माएं आ रही है, ये उनकी बात चल रही है। जो ऐशलम लेने यहाँ आ रही है, ये बाहर की आत्माएं हैं, जो सहयोगी बनी वो आत्माएं आ रही है, ये ब्राह्मण नहीं है, वो कैटेगरी ये ब्राह्मणों की कैटेगरी नहीं है ये तो। पर उनमें वो आत्माएं थी जो सहयोगी बनी, पर उन्होंने क्या कहा? कार्य अच्छा है, ये कार्य परिवर्तन कर सकता है, कार्यकर्ता अच्छे है, ये कहा उन्होंने। उन्होंने माना नहीं, कभी योग नहीं लगाया, कभी मुरली सुनने नहीं गए, कभी ज्ञान नहीं लिया, उठाया नहीं कोई ज्ञान, परंतु सहयोगी रहे, विरोध नहीं किया, सहयोगी। अगर घर से कोई चल रहा है तो उनको चलने दिया, ऐसी आत्मा है, ये है सहयोगी। दूसरी कैटेगरी है इंतजार करने वाली, देख लेंगे क्या पाया है, देख लेंगे क्या मिला है, देख लेंगे क्या होगा, ये सब करने वाली, इंतजार करने वाली आत्मा। इनकी भी बहुत बड़ी क्यू लगेगी, परंतु ये इंतजार ही करते रहेंगे। परंतु इनके प्रति पर हमारा अभी कर्तव्य है, दो स्वमान यहां पर है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, और इनको किरणें देनी है। कौन सी? शुभ भावना और शुभ कामना, शुभ भावना की किरणें और श्रेष्ठ बनने की कामना की किरणें, श्रेष्ठ बनने की कामना की किरणें। ऐसी आत्माओं के प्रति रहम दिल, हाँ नहीं इनको नहीं, वो विरोधियों को है। अभी हम इंतजार करने वालों को, इनके लिए इंतजाम करना है, ऐशलम के अधिकारी, ऐशलम के इंतजाम के अधिकारी इनको बनाना है, उसके लिए इनको किरणें देनी है। फिर ये नहीं कहना सबके लिए, आज के वरदान में क्या था, ये भी बाप समान बन जाए, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये नहीं, अवगुण नहीं देखना, ये भावना वहां पर। तो रहम का भाव नहीं, रहम तो नहीं कहा यहाँ पर, कल्याण का भाव, ऐसी जो इंतजार करने वाली आत्मा है उनके प्रति। जैसे बुद्ध के जीवन में दिखाया है कि महात्मा बुद्ध को आम्रपाली नगर वधु जब वो मिलने आई तो सबने तो विरोध किया। उसने एक रिक्वेस्ट की, उसने एक निवेदन किया कि आप मेरे निवास पर आकर मुझसे भिक्षा लीजिए, परंतु बुद्ध की जो दृष्टि थी वो बहुत ऊंची दृष्टि थी। उन्होंने तो उसके पूर्व जन्म को भी देखा कि इस जन्म में वो क्यों ऐसी बनी, और उसने कहा कि मैं पतित हूं, मैं विकारी हूं, परंतु उसमें अंदर ही अंदर ये दिव्य भाव था कि उसे भी उस नारकीय जीवन से मुक्त होना है। बुद्ध वहां गए, उसके घर में ठहरे और उससे भिक्षा ली। बाद में तो वो खुद ही भिक्षुनी बन गई, वो दूसरी बात है, परंतु वहां पर उन्होंने एक वाक्य कहा था अपने शिष्य से, ये संसार आम्रपाली को नहीं समझ सकता, उसकी जो मनोदशा है, उसकी जो भाव दशा है, ये संसार तो उसे एक नीच अधम स्त्री समझता है, वो इसे समझ ही नहीं सकता है। संसार की इतनी ऊंची अवस्था ही नहीं है अभी कि उसे समझ पाए। इसके लिए वो कहती भी है उसे, आप करुणा के सागर हो, ऐसा करुणा का सागर बनना। वैसे नहीं तो कोई कारण नहीं था बुद्ध क्यों उसे दे, वो तो सन्यासी है, तपस्वी है, योगी है, ब्रह्मचारी है, क्यों किसी के घर जाए, और वो भी एक वेश्या के घर। परंतु संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह संत का हृदय होता है नवनीत की तरह, जल्दी पिघलना परंतु करुणा से पिघलने वाला हृदय है। करुणा अवतार कहा गया है बुद्ध को, उन सभी पर कृपा की, उन सभी पर दया की जो वास्तव में उस समय की मान्यता के अनुसार योग्य नहीं थे, पात्र ही नहीं थे, परंतु कृपा की। तीसरी आत्मा है विरोधी आत्मा है, ये विरोधी आत्मा इस समय जल रही है, तप रही है पश्चाताप की अग्नि में, बेचैन है। यहां पर उन पर रहम कृपा दया, रहम कृपा दया, रहम और कृपा और दया, दया का भाव। बेचारे निर्बल, बेचारे अज्ञानी थे, इसके लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए, बहुत बड़ा हृदय। जीसस क्राइस्ट को जब सूली पे चढ़ा दिया गया, एक क्षण के लिए उसके मन में कंप्लेंट निकली थी, ओ लॉर्ड वेयर आर यू, कहां तुम हो, मुझे क्या तुमने छोड़ दिया है। बाद में तुरंत जैसे उसे अपनी ही गलती का एहसास हुआ, ये मैं क्या कह रहा हूं, थाई विल शैल बी डन, जो तेरी इच्छा है वही होगा। एक क्षण के लिए परंतु एक भाव आया था कि क्या तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया है। और फिर वो देखता है उसके सामने इतने सारे लोग, और उन सभी के लिए प्रार्थना करता है, दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग, उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे, उन्हें क्षमा कर दो। उन सबको क्षमा कर दिया। उसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती, कितने लोग उनके जान के पीछे थे, और वो जो स्त्री थी एक जिसने उन्हें भोजन खिलाया था, उसने कांच के टुकड़े कहो उस भोजन में मिला दिए थे, उन्होंने वो खाए और रात में तबीयत बिगड़ी, पर उसको फिर उस स्त्री को बहुत पश्चाताप हुआ। वो उनके पास गई, उसने कहा भी, स्त्री थी या पुरुष था, शायद स्त्री थी, उसने कहा भी कि मैंने ये किया, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि अगर ये लोगों को पता चल जाए मेरे शिष्य को, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम रातों रात यहां से भाग जाओ, क्योंकि मैं तो अभी चला जाऊंगा थोड़ी देर में, मैं तो शरीर छोड़ दूंगा। उसको कह दिया कि आप चले जाओ, और वो स्त्री थी शायद, उसको जाने को कह दिया। हाँ, परंतु इस बार वो कांच के टुकड़े थे पीसे हुए, इसने तो कुछ नहीं कर सकता था, सच्चाई के मार्ग पर कांटों की कमी नहीं है, पीसे हुए, बारीक किए हुए, सच्चाई के मार्ग पर विरोधियों की कमी नहीं है। ये वाक्य पृथ्वीराज चौहान का है, तराइन के युद्ध, बैटल ऑफ तराइन 2 के पहले उच्चारण किए हुए, 1193। तो ये जो मार्ग है इसमें बहुत कांटे हैं, कदम कदम पर। तो तीन प्रकार की आत्माएं, विरोधी आत्माओं के लिए क्या करना है, रहम, कृपा, दया। स्वरूप हमारा होगा शीतला देवी, दूसरा हमारा स्वरूप होगा वरदानी, उसमें उन्हें क्या करना है, वरदान देना है, भक्त भव, ये हमारे लास्ट भक्त बनेंगे। विरोधी है वो लास्ट भक्त बनेंगे। फिर हमारे अंदर और एक दूसरी भावना जागृत करनी है, विश्व बंधुत्व की, ब्रदरहुड, ये नाता निभाना है उन आत्माओं से। इसके लिए अंचलि देना है भक्तिपन की। तो ये तीन कर्तव्य हमारे अंत के, तीन आह्वान वो हो गया। अभी आगे जो सेवा की, अभी ये दीदी दादी सेवा की सीट में नजदीक है, वो और किस बात में नजदीक होंगे, त्याग और सेवा, तपस्या और सेवा ही किस बात का आसन है, आगे का जो राज्य भाग्य है या फिर सिंहासन है उसका। सदा सिंहासन बच्चों की निशानी, सिंहासनधारी साथ होंगे, यहाँ पर याद का साथ होगा, वहां पर सदा सिंहासनधारी, या यहाँ आसन और तपस्या और सेवा का आसन, तो वहां सदा सिंहासनधारी। संगम युग पर हर कर्म में जो बाप दादा के साथी है वह भविष्य में क्या होंगे, यहाँ कर्म में साथी, हर आयु में साथी, पढ़ाई में साथी, सैर में साथी, सेवा में साथी, उसके बाद में चरित्र में साथी, उसके बाद में किशोर जीवन, अलौकिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, बचपन में साथी, हम शरीक, सदा सहयोगी, सदा साथी, सदा समीप, ये सब उधर समीप होंगे। इसको यहाँ पूरा करो। यहाँ एक चिंतन का प्रश्न है, सदा साथीपन का अनुभव कैसा हो, इसको हम यही छोड़ देते हैं, इसको हम आगे कभी लेंगे, क्योंकि ये चिंतन नहीं, ये प्रश्न का उत्तर मुरली में नहीं है। दूसरे प्रश्न है चैतन्य दीपक, इसका भी उत्तर मुरली में नहीं है, ये नागेश भाई ने चिंतन के लिए दिए है प्रश्न। और दो ऐसे प्रश्न है, टोटल चार प्रश्न ऐसे है, जो चार या पांच जो चिंतन के लिए, जिनके उत्तर मुरलियों में नहीं है। दूसरा प्रश्न है इंतजार करने वाले का बोल दिया, फिर है सहारे के गले लगाएंगे, ये चिंतन का विषय है, सहारे के गले लगाएंगे से क्या अभिप्राय है, क्या कहेंगे, वो आत्माएं जो है वो सहारे को गले लगाएंगे, स्वीकार करने से अच्छा क्या, सहारा स्वीकार थोड़ी करना होता है, ऑफर है क्या उनको सहारे का अनुभव होगा, मतलब सहारा जैसे उनके गले लग रहा है, उनको मिल रहा है, वो आत्मा सहारा उनको गले लगाएगा, कि वो सहारे को गले लगाएगी, किस आत्माओं को, किस आत्माओं को, फिर से बताओ क्या सहारे के गले लगाएंगे, सहारा देने वाले हैं, वो जो सहारा दे रहे हैं उनको गले लगाएंगे, वो नहीं है सहारे, नहीं यहाँ अमूर्त, अमूर्त का वर्णन है, एब्स्ट्रैक्ट है ये इतना सिंपल फिलोसॉफी नहीं है, अमूर्त जो है निराकार, सहारे के गले लगना, व्यक्ति के नहीं, सहारे के गले लगाएंगे,
पानी पीने लो, पानी तो मुख में लगाएंगे ना
चलो भाव एक ही है कि उन आत्माओं को सहारे का अनुभव होगा, या ये आत्माएं उन आत्माओं को सहारे का अनुभव कराएंगी, या सहारे का गले लगना। आगे बढ़ो, वरदानी महादानी बच्चों की विशेषता बताइए, ये भी चिंतन का विषय है, ये वो, ये विधाता वरदाता बन जाएंगे, वरदानी महादानी बन जाएंगे। जगदम्बा को खुशी का राज क्या है, ये अभी वो मम्मा बाबा आ गए सभा में, क्या है राज, जी हाजिर, जी हुजूर का प्रैक्टिकल पार्ट कर्तव्य मिलाया, ये सबने, इसके लिए खुश हो रही मम्मा। रूहानी सेवाधारी का एक नाम सच्चे सेवाधारी, रूहानी सेवाधारी, उनकी विशेषता एवर रेडी। एवर रेडी तीन बातों में, कौन कौन सी? मनसा, मनसा में, मनसा में क्या? संकल्प धारण करने में, जो सोचा वो करना, वो करना। एक तो मनसा, दूसरा संबंध संपर्क निभाना, तीसरा था दूसरा संस्कार परिवर्तन, संस्कार मिलाना मिटाना। वहां पर रास की बात की है। आगे का प्रश्न है, गुजरात की रास मशहूर है, इसका क्या अभिप्राय है? जो बताया महिषासुर और दुर्गा देवी का युद्ध, उसमें आधार से वो रास करते, पर यहाँ रास बहुत तालबद्ध लयबद्ध होती है, तो यहाँ संस्कार मिलन की रास। तो उसमें बाबा ने एक प्रतिज्ञा कराई है, जो संकल्प करना है सभी को, कौन सा? हम संस्कार मिलन की रास
करेंगे
ही, करके रहेंगे। एक तो ये, दूसरा कहा श्रेष्ठ संस्कार मिलन की, एक दो संस्कार की रास है, एक तो आपस में रास करना, एक बाप से रास मिलाना, एक आपस में मिलाना, और तीसरा है रास करना, वो है मन की डांस। एक है रास करना, एक है रास मिलाना। एक जगह बोला संस्कार मिटाने की भी, वो भी कहा है। सबसे बड़ी रास कौन सी है? यही है, संस्कार मिलाने की। यह ब्राह्मण जीवन ही आपका उत्सव है, कैसे? आपकी हर घड़ी कैसी हो? नई घड़ी, नई घड़ी, नया सेकंड, नया सेवा का प्लान, नया उमंग, नया उत्सव, नया संकल्प, नया दिन, नया वर्ष उधर, नया नवयुग इधर। इतनी नई चीजें बोली है, और नया ये उत्सव, तुम्हारी दिवाली जो है वो क्या है? उत्सव। ये जीवन ही तुम्हारा उत्सव है, ब्राह्मण जीवन ही उत्सव है, जिसमें तुम क्या करते हो? सदैव खुशियों में झूमते रहते हैं। जो सदा खुश रहते हैं वो, लास्ट सीजन की मुरली महावाक्य, कमलेश भाई, जो सदा खुश रहते हैं वो बाप की आंखों के सामने घूमते रहते, झूमते रहते, घूमते रहते, घूमते भी रहते, झूमते भी रहते, झूमते भी रहते, झूलते भी रहते सब। ब्राह्मण जीवन ही क्या है? आपका उत्सव, सेलिब्रेशन, फेस्टिवल, समारोह। जीवन ही उत्सव है, चार दिन, पांच दिन, दो दिन, वो नहीं, कंटिन्यूस बज रही है, हृदय की वीणा बज रही है, संगीत उठ रहा है, मन की डांस निरंतर चल रही है। इसका अभ्यास बढ़ाओ,
शौक रखो,
रुचि, इंटरेस्ट, प्रैक्टिस, ट्रायल करो। यही तो होमवर्क था, सात दिन, एक मास,
ट्रायल में लगे हुए।
नहीं, पर सदा तो कुछ है ही ना, दुख है, दुख तो है ही नहीं ना, कि है थोड़ा थोड़ा कोने कोने में,
नहीं पड़ी देर तक, तब तक थोड़ा।
तो आपकी हर घड़ी कैसी हो? उत्साह वाली, उमंग वाली, उत्सव वाली, दुख का नाम निशान नहीं है क्या? पर ऐसा कि ऐसे ही थियरी, अभी गणेश किसे कहेंगे? अभी टीचर से मुलाकात,
टीचर,
वो टीचर का तो आ गया बीच में, अच्छा ये बीच का ला लिया इन्होंने, तो अभी वापस आ गया उधर। चलो, बीच में गणेश आ गया, अभी टीचर्स का, टीचर्स में एक तो फरमान दिया है एवर रेडी, दूसरा गणेश का, गणेश में दो, नॉलेज और विघ्न विनाशक। तो गणेश किसे कहेंगे?
समझदार,
बुद्धिमान, वो सारा कुछ। और विघ्न विनाशक टाइटल लेने के लिए कौन से बोल वर्जित है? ये सबसे पावरफुल प्रश्न है।
ये तीन चार बातें,
तीन तो उसमें दिए, दस बारह बाहर निकाल सकते हैं, तीन उसमें दिए। कौन सी
परिस्थिति?
ऐसी थी, वातावरण, वायुमंडल ऐसा था,
इसलिए ऐसा
हुआ, ये बोल वर्जित है। और क्या, कौन सा? अच्छा अच्छा, वो बहाना कारण, वो सब नहीं देना है। नहीं, दूसरे ब्राह्मण कौन से बहाने देते हैं? कौन से बोले जो वर्जित है? वर्जना है जो बोल,
कर लेंगे, हो जाएगा।
हिंदी में शब्द है वर्जना, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? बहुत सुंदर शब्द है इंग्लिश में, टैबू, टैबू, टैबू है वो, वर्जना है वो, वर्जित है, टैबू है ये, इस तरह की चर्चा करना टैबू है। हाँ, मतलब संसार में इस तरह की चर्चा नहीं की करनी चाहिए, तो टैबू है वो, वर्जना है जैसे वो। और जो वर्जना होती है ना, वही ज्यादा करना चाहते लोग। अगर यहाँ पे सामने के बोर्ड में लगा दिया जाए सुबह 5 से 6 बजे तक यहाँ आना मना है, तो क्लास भर जाएगी ये सुबह की। क्योंकि लोग वही जाना चाहते हैं जहाँ क्यों मनाए, क्या है, क्या कुछ तो है। अगर ऐसा बोर्ड लगा दिया जाए जैसे दिखाए, एक जंगल में एक व्यक्ति गुजर रहा था, एक तख्ती लगी थी, आगे जो झोपड़ी है वहां जाना बिल्कुल मना है, वहां देखना भी मना है। तो जो भी अंदर जाता था, अंदर जाके देखता ही था, अंदर जाके एक साधु बैठा रहता था, वो अंदर जाता था और कहता है कि यहाँ लिखा है यहाँ जाना, बताए। हाँ बताता हूँ क्यों, बैठो और प्रवचन चालू। वैसे कोई आता कौन है जंगल में सुनने उसको। जैसे तख्ती लगा दो, जो नहीं बोला वो करने का स्वभाव है मनुष्य का।
सूचना पट,
बोर्ड, सूचना पट, तख्ती, हाँ, तो उसको बोर्ड लगा दो तो
अग्री लगाएंगे, आना मना है,
यहाँ आना सख्त मना है। तो वो जो है ना, ऐसा जब लगा रहता है कहीं पर भी, ये देखना मना है, इसके पीछे एक गंभीर सी पॉइंट है। काम विकार के विरोध के लिए संसार में ऐसी बहुत सारी मैगजीन्स होती है ओनली फॉर फीमेल्स, उसको पढ़ने वाले जो होते हैं सारे मेल्स होते हैं। ओनली फॉर लेडीज, जहां ये लिख दिया वो सबसे ज्यादा बिकती है। ओनली फॉर मेल्स, वो सबसे ज्यादा फीमेल्स पढ़ती है। इसी सिद्धांत का कंपनियों ने फायदा उठाया है। मनुष्य को जो कहा गया ये करना नहीं, ये देखना नहीं, वही देखने की इच्छा होती है, क्या है क्या है क्या है। आज जो संसार में प्रकोप है ऐसा विकार का, काम का, क्यों? क्योंकि उसकी कोई चर्चा नहीं है, परंतु उन्हें बचपन से समझा दिया जाए था, चुप, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछना। उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, ये बढ़ जाती है, क्या है क्या है। माँ बाप से पता नहीं चलता है तो मित्रों से पता चलता है, और मित्रों से जब पता चलता है तो विकृत स्वरूप धारण करता है। वो काम का प्रकोप है संसार में आज, उसी तरह हिंसा भी। हिंसा, हिंसा का भी जन्म ऐसा ही होता है, बचपन से समझा दिया था अच्छा हिंसा नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी, वो कोई दूसरे मार्ग ढूंढता है और वहां से हिंसा का विकृत रूप आतंक में जन्म लेता है। जो उसको नहीं बोलो वही कहता है। सिगमंड फ्राइड, फादर ऑफ साइकोलॉजी का हो, साइकेट्री का हो, सिगमंड फ्राइड के जीवन, जिसके बहुत बड़ा व्यक्तित्व है सिगमंड फ्राइड, उसके जीवन में ही वर्णन है। वो और उसकी पत्नी एक दिन किसी बगीचे में गए अपने बेटे को लेकर। जब जाने का समय हो गया, गेट बंद होने लगे, तो देखा बेटा है ही नहीं। तो पत्नी से उसने पूछा, बहुत ढूंढा कहीं नहीं मिला। फिर उसने पत्नी से पूछा, क्या तुमने उसे कहीं ऐसी जगह जाने को कहा था जहां मना किया था किसी जगह जाने को? उसने कहा हाँ, वो जो फव्वारा है वहां पर, फाउंटेन, उसके पास जाने को मना किया था। उसने कहा वही होगा। वो जाता है, देखते है वो बच्चा पैर नीचे डाल के पानी में डाल के खेल रहा है। तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता? उसकी पत्नी ने कहा, उसने कहा आंसर बहुत समान है, सारा संसार भी तो वही कर रहा है। जो मना किया जाता है वही उत्सुकता, रुचि, इंटरेस्ट वहां डेवलप होता है, क्या है क्या है, क्यूरियोसिटी, इनक्विजिटिवनेस, वो जानने की अभिप्सा वहां निर्माण होती है, और वो क्यूरियोसिटी ही उसे काम के नरक में ले जाती है एक दिन। कहाँ थे हम? वर्जित में। तो टैबू में थे। कौन कौन सी चीज के लिए टैबू है? विघ्न विनाशक के लिए कौन कौन से शब्द वो नहीं कहना चाहिए? बाबा ने कहा बातचीत भी नहीं होनी चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए, नाम निशान भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये विघ्न क्यों आया, मेरे पास ही क्यों आता है, इनके पास क्यों नहीं जाता है, हमेशा मैं ही क्यों। अंग्रेजी में एक किताब है, वाई मी, मैं ही क्यों हमेशा। गाड़ी से जा रहे थे, मैं ही बीमार पड़ा। पिकनिक गए, मैं ही बीमार पड़ा, बाकी सब पिकनिक कर रहे। गाड़ी से जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, सबसे ज्यादा चोट मुझे ही लगी, बाकी सबको थोड़ी थोड़ी चोट लगी। वाई मी, मैं ही क्यों। सबको फल मिल रहा है, टोलियां मिल रही है, मैं जब पोता तो सबसे छोटा आम मुझे, बाकी सबको बड़े बड़े आम। ये इधर ब्राह्मणों की टोलियां मिल रही है, हम गए तो सबसे खत्म। बचा कुचा दिन भर सेवा करो, ये करो वो करो, सब कुछ करो, जाओ तो देखो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा। हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है बाबा? बाबा मदद करो, हे बाबा कृपा दया आशीर्वाद। बाबा की भक्ति, बाबा की प्रार्थना, भक्ति के तो संस्कार है ना, दबा दिए ना इधर ज्ञान में आ गए तो, गए थोड़ी ना, दब गए हो तो दमित भावनाएं तो निकलेगी ना बाहर, अभी उसका रूप वैसा थोड़ी ना होगा, ओ माँ करके, हे माँ हे माँ, हे गोविंद हे गोपाल, वो नहीं होगा अभी। आप बाबा वहां का रूपांतरण, वहां की जो भक्ति थी रजोगुनी भक्ति तमोगुनी भक्ति, अभी सतोगुनी भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है कि बाबा मदद करो, बाबा हमें सकाश दो हमारे लिए। यहाँ तो कितने लोग आते हैं हमारे पास सुशील भाई यहाँ पर, जो क्या कह के जाते हैं, हमारे लिए योग करना। अभी एक एजेंसी खोलने वाले हैं हम यहाँ पर, सकाश एजेंसी जिसको जिसको सकाश चाहिए बोलो, कितनी चाहिए, कब चाहिए, कहाँ चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, उसका फिर हम प्राइस भी थोड़ा फिक्स कर देंगे। मकान बनाना है, कमरा, पहले तो जमीन नहीं मिल रही है सेंटर के लिए, कितना दिन की सकाश चाहिए उसका पूरा एक वो जैसे दुकानदार लगाते हैं ना, चाय इतने रुपए, समोसा इतना रुपए, ये प्लेट उतना रुपए, राइस प्लेट, तो वैसी पूरी जमीन के लिए सकाश इतने रुपए, कितनी आ? क्या पढ़ने वाले, हाँ कितना करना है यहाँ, बस हम सकाश एजेंसी खोल देते हो, क्या करना है बताओ, जमीन चाहिए, मकान चाहिए, विघ्न हटाना है, स्टूडेंट्स बढ़ाने हैं, जिज्ञासु बढ़ाने हैं, प्रोग्राम सफल करना है, बीमारी दूर करनी है, सेंटर क्या गड़बड़ है, झगड़े हो रहे हैं,
कोई बोले है झगड़ा कर रहा है इसको हटा दो
सकाश नहीं, उसमें हम लिखेंगे यहाँ ये सेवाएं उपलब्ध है, उसमें यही सेवा के लिए आना, शर्तें होंगे, ऐसे नहीं कि कोई किसी के लिए भी आ जाए यहाँ पर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, सकाश एजेंसी, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, टाइमिंग और कितनी सकाश चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कैसी चाहिए, सारा कुछ बनाना पड़ेगा अभी, ऐसे ही टाइम आने वाला है। ब्राह्मणों के ओनली फॉर बीकेज, हाँ फीस का देखना पड़ेगा थोड़ा तो बाबा के प्रार्थना करते हुए यहाँ आके कहते हमारे लिए योग करना। एक माता थी ना, चली गई क्या सुबह क्लास में आना है पर नींद ही नहीं खुलती, क्या करूं मेरे को जरूर सकाश देना आप ताकि मैं यहाँ आ सकूं अमृत वेले तो अमृत वेले सकाश, नींद अमृत वेले, हाँ वो दूसरी सकाश, अमृत वेले उठाना है, उठना है तो बोलो उसकी सेपरेट सकाश, मुरली में नींद आती है उसकी सेपरेट सकाश, सेवा में बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, रस नहीं है करने का, उसकी सकाश अलग, थकान जल्दी होती है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, अकेला अकेला लगता है, तन्हा तन्हा लगता है क्या लगता है वो बताओ, बस सिर दर्द होते रहता है बार बार, जैसे सेवा में गया सिर दर्द चालू, बाकी नहीं होता है, बाकी ठीक रहते है, क्या करना है बताओ। उस सब के लिए अलग अलग सकाश के पैकेजेस, सकाश पैकेजेस हाँ पुरुषार्थ किसी का तीव्र नहीं हो रहा है, हाँ किसी का कहते चिंतन बिल्कुल नहीं चलता है, हाँ फिर मुरली बिल्कुल याद नहीं रहती है, हाँ, इसके लिए सेपरेट सकाश देंगे,
लेकिन वो पैकेज दे देंगे, वो तो देंगे, अगर नहीं हुआ तो हमारी कमत आ जाएगी हम फिर सकाश दे देंगे, फिर आ गए
नहीं हम उसमें शर्त रखेंगे ना कि अगर काम नहीं हुआ तो पैसे वापस सकाश आकर बुद्धू घर आए फिर से लौट कर बुद्धू घर आए तो ऐसी एक एजेंसी खोलना बाकी है, बस वही एक काम रह गया है बाकी, हाँ गारंटी का कोई भरोसा नहीं है फिर भी लोग आएंगे बोलेंगे चलो चलेगा, बाकी सब जगह हलचल है, यहाँ कम से कम दे तो रहे हाँ वही तो सकाश तो जाएगी हमारी, तो हमारे पास तो काम ही कुछ नहीं है, दूसरा काम ही क्या है हमारे पास, धंधा ये है सकाश देना, जो दिखा चलते फिरते उठते बैठते सकाश, तो बाबा ने कभी कहा है रात में आधी रात को यदि आँख खुलती है तो क्या करो सकाश, तो अव्यक्त महावाक्य है, आधी रात को यदि आँख खुलती है, ऐसे ही गलती से मच्छर की वजह से, गर्मी की वजह से, ठंड की वजह से, और किसी कारण से, और शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर की बीमारी की वजह से, आँख खुली, सबसे पहला काम आ नहीं करना, प्रकाश। मच्छर को भी दे दो, जीव जंतु सबको, सब 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 सबको सकाश, जितने हैं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जगुपानी, संसार में जो कुछ है सबको सकाश।
दो भाई थे आपस में, रात को सो रहे थे, सोचते थे बाबा को याद करते ना, सोचते सोचते ऐसे ही हो गया, सोचते थे क्या कर रहा है, थोड़ा सकाश दे रहा हूँ।
किसमें सकाश दे रहा हूँ? अच्छा, ग्लोब को। एक बार हम मेडिटेशन हॉल में बैठे थे, पीछे बैठे थे, हमारी जो जगह है पीछे एकदम सेफ सुरक्षित, कोई खतरा नहीं हुआ। तो सामने दो कुमार बैठे थे, तो एक कुमार था उसको बहुत नींद आ रही थी, इतनी जबरदस्त नींद आ रही थी, बहुत ही ऐसे गिर रहा था नीचे। तो दूसरे कुमार को इतना गुस्सा आया एकदम, उसने उठाया उसको, ए उठो, बिल्कुल ध्यान दो, योग करो। तो बहुत उसको ऐसे इशारे से, बिल्कुल बिना कुछ कहे, मुख से ही बिल्कुल इशारे से बहुत चिल्लाया, और अंदर ही बहुत शायद खुशी हो गई होगी उसको। चिल्लाने के बाद तो अच्छी खुशी होती है ना, दूसरों को श्रीमत सुनाने के बाद। अब थोड़ी देर के बाद जिसने चिल्लाया वो सोने लगा। फिर वो नीचे कभी इधर गिर रहा है, कभी इधर, कभी नीचे। फिर जो बाजू वाला था, अब उसकी बारी थी, उसने अपना बदला पूरा किया। तो होता है, तो भक्ति करना, बाबा को पुकारना, मदद मांगना, सकाश के लिए गुहार लगाना, ये सब विघ्न विनाशक के बोल नहीं है। विघ्न विनाशक अर्थात बाबा ने परिभाषा दी है इसी मुरली में, वायुमंडल और वातावरण को परिवर्तन करने वाले। अगर कोई दूसरा विघ्न बने तो तुम विघ्न विनाशक बन जाओ, और वायुमंडल और वातावरण को बदल दो, परिवर्तन कर दो, ये परिभाषा दी है। और उसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, बहुत ही सुंदर उदाहरण, वो सूर्य हद का, तुम्हारी दुनिया का, लौकिक, पार्थिव, भौतिक, फिजिकल, वो सूर्य अंधकार को मिटा सकता है, तो तुम कौन हो? बेहद के मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुम इन विघ्नों को मिटाओ, हटाओ। फिर यहां गुजरात वालों को बाबा ने कहा है प्राइज देंगे, आज तक दी नहीं बाबा ने कोई प्राइज, कितना साल हो गया, कब से इंतजार ही कर रहे हैं, सालों बीतर गए, गुजर गए, हर मुरलियों में कहा ये करो तो प्राइज दूंगा, वो करो तो प्राइज दूंगा, ये करो तो बख्शीश दूंगा, नहीं पर ऐसा तो होगा नहीं, किसी ने नहीं किया, कोई तो होगा। हाँ, नहीं पर कहा बाबा ने, कहा बाबा को जो, बाबा ने इसमें बड़ी युक्ति रची है, कौन से प्राइज देंगे पता है, जो बाबा को मिलते ना वही। हाँ, मतलब एक बार दादी जान की हॉस्पिटल आए थे, तो कुछ सेलिब्रेशन किया था, इतना लोगों ने अपना नाम नाम लिख लिख के दादी को दिया, इनकी तरफ से, उसकी तरफ, सब अपना नाम लिख के, हाँ पता चले ना हमने दिया है करके, पूरा भर दिया वो पूरा, ठीक है। फिर दादी वो सब कुछ लेके गई ज्ञान सरोवर, सारे विदेशियों को बुलाया, सब बांट दिया। हम सोच रहे थे हमने कुछ दिया ही नहीं, हमें भी तो कुछ देना चाहिए, ये लोगों ने, किसी ने इतना कुछ लगा, सब पैकिंग वगैरह की, नाम लिखा फ्रॉम दिस, हर एक ने नाम लिख लिख के दिया। और हम वहां जाके गए तो वो बांटना, वितरण चालू था वहां पर। सब बांट दिया, कुछ नहीं, निर्मोही, अनासक्त अवस्था। तो बाबा कौन सा प्राइस दे रहे हैं? बाबा के पास जो माल है वही दे देंगे, पता नहीं दिया कि नहीं दिया। अनासक्त, यही तो आसक्तियां है, छोटी छोटी चीज में आसक्ति है, बर्तन, पॉलिथीन, चम्मच, इतनी आसक्ति है इन सभी चीजों में कि ये छूटती नहीं बिल्कुल, नैपकिन, चप्पल,
तो इकोनॉमी है
ना? नहीं, इकोनॉमी रहना वो दूसरी बात है, इकोनॉमी रहना तो बहुत अच्छी चीज है, आसक्ति बहुत मतलब वो, हाँ मतलब यूज भी नहीं करना, वैसे ही रखे रखना, छोटा सा कप, कभी यूज नहीं किया, कभी ना खुद पिया ना किसको पिलाया, पर रखा हुआ है। आज क्या कहा है, वैराग साकार मूर्ति सुबह की, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है सब कुछ मरे पड़े हैं, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है सब कुछ विनाश हो जाएगा आंखों सहित, किसी और मूर्ति में बाबा ने कहा है, कुछ कुछ भी नहीं बचेगा, आंख भी खत्म हो जाएगी, जो आंख देख रही है वो आंख भी खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं है, देह से क्या प्यार, ये भी कहा ना एक जगह, विदेही बन जाओ, देह से क्या प्यार, क्या ममत्व, ये संसार चलती फिरती लाशें है सभी, इस संसार से क्या ममत्व।